तो आज हमारे इस 21 अक्टूबर के संध्या जागृति कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। 22 तारीख 22 अक्टूबर दैट मीन्स आप लोग जग रहे हैं, सोने रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। तो 22 तारीख के संध्या जागृति में आप सबका स्वागत है। और ये कौन सा महीना है? कार्तिक का महीना है। ये कार्तिक के महीने में कौन सी लीला हुई थी? दामोदर लीला, जिसका चित्रपट आपके सामने है। हरे कृष्णा, इसको बंद करो। तो ये जो कार्तिक महीना है, ठीक है, चलो छोड़। ये जो कार्तिक का महीना है, इसके अंदर बहुत सारी लीलाएं हुई है। सबसे पहली लीला जो है वो कृष्ण भगवान ने सभी गोपियों के साथ में रास रचाया, रास लीला रचाया। उसके बाद में अभी अष्टमी आएगी, वो अष्टमी के दिन राधा कुंड का निर्माण हुआ। उसके बाद में दीपावली आएगी, दीपावली के दिन ये लीला हुई थी जो आपके सामने हुई। ये किसी को पता नहीं है, हम लोग बोलते हैं कि दीपावली के दिन नरकासुर का वध किया था, वो भी सही बात है। नरकासुर का वध भी इसी दिन हुआ था, जिस दिन लोग दीपक जलाते हैं सब जगह पे, उसी दिन भगवान को ऊपर से बांधा गया। और उसी दिन किसी और समय, उस समय नहीं, किसी और समय उसके बाद में जब कृष्ण भगवान की शादी हुई और 8 पटरानियां हो चुकी थी, और उसके बाद में ये कथा आती है नरकासुर वाली। फिर उसके दूसरे दिन में गोवर्धन की पूजा हुई। इतनी सुंदर लीला है, हम लोग अभी उसको अस्पताल में 21 अक्टूबर को मनाएंगे ना, नवंबर को, रवि 21 नवंबर को, 21 नवंबर को गुरुवार के दिन यहाँ पर गोवर्धन पूजा मनाएंगे। तो उस दिन सभी ब्रजवासियों ने इंद्र के जगह पर गोवर्धन की पूजा किया। करनी थी इंद्र की पूजा, कृष्ण ने आके बताया नहीं करना है, इंद्र की पूजा नहीं करनी है, गोवर्धन की पूजा करनी है। तो सब लोगों ने प्लान कैंसिल किया इंद्र की पूजा का और पूजा किया गोवर्धन का। और सबसे पहले भोग लगाने के बाद में अगर किसी ने प्रदक्षिणा की होगी गोवर्धन की, तो किसने की होगी, किसी को पता है? सबसे पहली गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा किसने लगाई? आज तो लाखों करोड़ों अब्जों लोग परिक्रमा लगाते हैं, एनी आइडिया? देखो मुरली बज रही है। सबसे पहले श्री कृष्ण भगवान ने गोवर्धन का परिक्रमा लगाया, ये बड़ा अद्भुत बात है। फिर उसके बाद में 7 दिन 7 रास इंद्र ने वर्षा किया, इंद्र ने वर्षा शुरू किया, फिर भगवान ने गोवर्धन को उठाया और 7 दिन 7 रात तक पकड़ के रखा। ये भी इसी महीने में हुआ है। तो ये हुआ दूसरे दिन का दिवाली का। थर्ड डे में क्या हुआ, बलि महाराज जो है, जिनको वामन देव भगवान ने उनके सर पे पांव रखकर जमीन पर से अंदर पाताल में घुसा दिया था, वो बलि महाराज जो है वो विश्व के राजा थे, तो इस दिन उनको सौलत मिलती है कि आइए आपका राज्य कैसे चल रहा है वो देखने को आइए। तो वो सूतल लोक से पृथ्वी पर उस दिन आते हैं बलि प्रतिपदा के दिन, और उस दिन वो पृथ्वी में सब लोग दीपक जलाकर दिखाते हैं हम कितने खुश हैं, आप चिंता मत करना हम सब लोग आनंद में हैं, सब त्यौहार मना रहे हैं, सब बहुत खुश हैं, इसलिए हम लोग दीपक जलाते हैं सब जगह पे। वो दिन कौन सा है? बलि प्रतिपदा का। और चौथा दिन कौन सा है दीपावली का? अरे सब महाराष्ट्र लोग हैं आप लोग, इधर भाऊबीज है ना, विसरता कसा तुम्हें? हाँ सगड़ा बहनी विसर ले, भाऊ पण विसर ले, ठीक है। तो चौथा दिन है भैया दूज का, भाऊबीज। उस दिन क्या हुआ, उस दिन ऐसा वरदान है कि जो भाई अपने बहन का हाथ पकड़कर जमुना जी में डुबकी लगाता है वो दोबारा इस दुनिया में दुख भोगने के लिए जन्म नहीं लेता। इसलिए आप देखेंगे मथुरा में जाएंगे विश्राम घाट पर तो 80 साल का भाई और 75 की बहन दोनों हाथ पकड़ के जमुना जी में डुबकी लगा रहे। और उस दिन में ऐसा भी वरदान है कि केवल बहन के ही हाथ का भोजन उस दिन खाना है और कुछ नहीं खाना है, क्योंकि उस दिन बहन के हाथ का जो भोजन खाएगा और जमुना जी में डुबकी लगाएगा वो यमराज के भय से मुक्त होकर भगवान के धाम में चला जाएगा। ये 14 दिन की कहानी है। फिर उसके बाद में एक अष्टमी आती है, उसको कहते हैं गोपाष्टमी। ये गोपाष्टमी वो दिन है जिस दिन भगवान को बड़े गाय का भार सौंप दिया गया। तब तक भगवान जो है छोटे छोटे बछड़ों को चराया करते थे, बहुत पास पास में करते थे। कोई बात नहीं, तो छोड़ो उसको। तो ये गोपाष्टमी के दिन भगवान को नंद बाबा ने छोटे बछड़े का सर्विस निकाल दिया और बड़े बड़े गाय का सर्विस दे दिया। इसके बहुत सुंदर कहानी है। अभी इतनी सुंदर सुंदर कहानियां हैं कि मंगलवार बहुत कम पड़ते हैं उसके लिए। एक हफ्ते में एक मंगलवार आता है, वो भी एक घंटे का टाइम मिलता है, उसमें भी सब लोग नहीं आते हैं। कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग नहीं आते हैं। इतनी सारी कहानियां हैं। आठवें दिन भगवान ने बड़े गाय का भार सौंप लिया अपने हाथ पर, और फिर पास पास जाने के बदले में दूर दूर गांव जंगल में वो जाने लगे। उसके बाद में इस महीने में लास्ट दिन जो लीला है वो तुलसी विवाह की लीला है। इस दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह होता है। बहुत सुंदर दिन है, बहुत पवित्र दिन है, बहुत सुंदर कहानी है। तो इनमें से आज का आपको कौन सी कहानी सुननी है? बहुत सारी कहानी का मैं नाम दे दिया, आपने ध्यान से सुना नहीं होगा, इसलिए आपको याद भी नहीं होगा कि मैंने क्या बताया। अभी आपको बताना है कौन सी कहानी सुननी है आज आपको। गोपाष्टमी की कहानी सुननी है। ओके, सब लोग तैयार है सुनने के लिए गोपाष्टमी कहानी? ओके, इसको बंद कर सकते हैं। तो कहानी ऐसी है कि बहुत सुंदर कहानी है। समय कितना है? ओके ठीक है, आधा घंटे का समय है, कोई बात नहीं, ठीक है बैठ जाओ। तो ऐसा है कि भगवान को छोटे बालक बछड़ों का भार दिया गया था। तो ऐसा नियम था, ये सब लोग उधर बैठ के टेक के सोना नहीं है, वो माली साहब को बुलाई, हरे कृष्णा, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट। तो कथा सुनने वाले को जरा सा बोर होता है, सोना सोने से क्या होता है, कथा का कथा समाप्त हो जाती है, बटन बंद हो जाता है। तो भगवान को बछड़ों का भार दिया था, तो ऐसा नियम था कि आप में से कितने लोग नंदगांव गए हैं? हरे कृष्णा, हर बरसाना कैंप में आप नंदगांव जा सकते हैं। बरसाना कैंप में आएंगे तो नंदगांव दर्शन होगा। नंदगांव भी एक पहाड़ है, वहां पर शिव जी शंकर जी जो है वो पहाड़ बनकर बैठे हुए हैं। तो उस पहाड़ पर जब नंद बाबा चढ़ेंगे लास्ट में, और वहां से कितना भूमि नजर आता है वहीं तक जाना है। जब भी देखने का मुड़ेगा लाला जी कहां पर है, कान्हा कहां पर है, बलराम जी कहां पर घूम रहे हैं, तो चारों तरफ उस पहाड़ के कोने पर चढ़ने के बाद में दिखाई पड़ना चाहिए। उतना ही दूर जाना है, उसके आगे नहीं जाना है, वही बाउंड्री है उसकी। तो एक दिन सब लोग, सप्तमी का दिन था कार्तिक महीने का, तो सब ग्वाल बाल हंस रहे हैं कृष्ण भगवान को, भाई क्या तुम कन्हैया, तेरे बाबा का तुझ पर विश्वास नहीं है कुछ, इसलिए अब तक बछड़ों को देख के रखा है। देख अभी ये बाउंड्री बना के रखी है, इसके बाहर नहीं जाना है, बछड़ों को देख के रखा है, मतलब तुम पर उनको विश्वास नहीं है, तुम तो छोटे से हो, उन पर उनको, तुम पर विश्वास नहीं है उनको। तो कान्हा बहुत नाराज हो गए, अरे हाँ इतना देखो, मैं इतना बड़ा हो गया हूँ अभी, मैं बड़े गाय को भी संभाल सकता हूँ, लेकिन उनको अभी छोटे बछड़े को दिया जा रहा है। तो बहुत उनको चिढ़ाया, उन्होंने बहुत चिढ़ाया कि तुम उसके योग्य नहीं हो, तुम पर उनको विश्वास नहीं है, तुम पे वो क्षमता नहीं है, तुम उसके भरोसे तुम बड़ी गाय को नहीं दे सकते आपके, इसलिए बाबा ने आपको बच्चों को दे के रखा है। बड़े दुखी हो गए सप्तमी के दिन, बड़े दुखी हो गए। और ये यहाँ पर जंगल में बातचीत चल रही है और कन्हैया नाराज हो रहे हैं, और घर पे बातचीत क्या हो रही है, यशोदा माई बाबा से बोल रही है कि देखो अभी कन्हैया बड़ा हो गया है, अभी वो बड़ी गाय का जिम्मेदारी ले सकता है, अभी कल से हम उनको बड़ी गाय का जिम्मेदारी दे देंगे। ये घर पे बातचीत होती है और वो बोलते हैं हाँ ठीक है, कल का दिन अच्छा है, हम लोग कर सकते हैं, लेकिन उसको पता नहीं ना वो क्या हो रहा है, उसको चिढ़ा रहे हैं बच्चे लोग। तो सीधे वापस आते हैं घर पे। हर रोज क्या होता है, सब गोपियाँ उनको आरती उतारती है, भाग के गोद में जाते हैं, फिर बाबा के गोद में जाते हैं, फिर आदमी क्या क्या हुआ मीठी मीठी बातें बताते हैं, फिर गोद में लेकर उनको पहाड़ चढ़ते हैं, फिर उनको अभिषेक करते हैं, फिर माखन मिश्री खिलाते हैं, फिर अभिषेक करने के बाद लोरी सुनाते हैं, फिर कन्हैया सो जाते हैं। ये रोज का रिवाज है। इस दिन जैसे ही आए सीधे किसी को मिले नहीं, किसी के गोद में नहीं गए, किधर भी नहीं गए, सीधा जाके अपने बिस्तर पे उल्टा मुंह करके सो गए। मतलब क्या है, बालक आज गुस्से में है, नाराज है किसी बात पर। जब बालक जब होते नाराज होते हैं तो क्या करते हैं, अपना मुंह उल्टा करके गद्दी में सो जाते हैं या तकिया के नीचे सो जाते हैं, दिखाने के लिए मैया को मैं आज नाराज हूं। तो उस दिन ना लोरी गाई गई, ना स्नान किया गया, ना वस्त्र बदली किए गए, ना माखन मिश्री खाई गई, कुछ नहीं। सीधा वहीं परेशान है, वो तो गुड न्यूज़ देने के लिए रेडी है कि बालक को गुड न्यूज़ देना है, लेकिन वो सुनने के लिए आया किधर है, सो गया जाके। अच्छा, अगले दिन हमेशा जल्दी उठते हैं क्योंकि जाना है जंगल में घूमने के लिए, तो सबसे पहले उठते हैं और बांसुरी बजाते हैं। सबसे पहले बिस्तर में खड़े होकर अपने सारे दोस्तों के लिए मॉर्निंग अलार्म है वो, है ना। जैसे मुरली बजती है सब ग्वाल बाल खुट के खड़े हो जाते हैं, तुरंत तुरंत स्नान करके श्रृंगार करके रेडी होकर अपने बच्चों को लेकर आ जाते हैं। उस दिन मॉर्निंग अलार्म बजा ही नहीं, बच्चे अपने आप उठ गए, अरे 6 बज गए, उजाला भी हो गया, अभी तक मुरली मॉर्निंग का मुरली अलार्म बजा ही नहीं। बोला अच्छा, फिर भी तैयार हो गए, और तैयार हो गए रेडी हो गए, बच्चों को लेकर भी आ गए, लेकिन अभी तक कान्हा का गुड मॉर्निंग नहीं हुआ है, अभी तक मुंह गद्दे के अंदर ही छुपा हुआ है। तो मैया आती है रोज सुबह और प्रेम से पुकारती है, कन्हैया नंदन नंदन मेरे प्यारे लाडले उठो। तो ये क्या करते हैं, यहां से मैया आती है तो उधर मुंह करते, फिर वहां से मैया आती है वहां से पुकारती है, बेटा उठो देखो सूरज आ गया है, देखो पंछी बोल रहे हैं, देखो गाय का आवाज आ रहा है, तो उधर मुंह करते हैं। तो क्या कहते हैं अपने भाषा में, कि जो सोया हुआ रहता है उसको जगाना आसान होता है, लेकिन जो सोने का बहाना करता है उसको उठाना बहुत मुश्किल होता है। सब जानते हैं कि कन्हैया जी जग रहे हैं लेकिन उठना नहीं चाहते क्योंकि नाराज है वो। तो बाबा से पूछते हैं क्या किया जाए, तो उठने को तैयार नहीं, सब ग्वाल बाल आके रेडी होके दरवाजे पे वेट कर रहे हैं, कभी आएगा कन्हैया, कभी जाएंगे घूमने के लिए। और बाबा और मैया के अरेंजमेंट से 900,000 गाय जो है उनको बता दिया गया था कि कल से आप कान्हा के साथ जाओगे। तो सब गायें भी बड़ी खुश थी कि आज से हम बड़े बड़े बाबाओं के साथ जाने के बदले में हमारे प्यारे प्यारे कान्हा के साथ जाएंगे। सब लोग लाइन से खड़े, 108 ग्रुप है उनके, मराठी बोलते ना कड़प कड़प गायन सा कड़प, इसे 108 है उनके। एक गोरा है रंग का कड़प है, एक काले रंग का है, एक भूरे रंग का है, एक ब्लैक पे व्हाइट डॉट है, ब्लैक व्हाइट पे ब्लैक डॉट है, एक भूरे रंग का है, एक भूरे रंग पे व्हाइट डॉट है, एक व्हाइट डॉट रंग पे भूरे रंग का डॉट है, ऐसा एक तिलकिनी है, एक धोरी है, एक कारी कमरी है, ऐसे अलग अलग 108 झुंड है उनके। सब अपने अपने लाइन में खड़े हैं, वेट कर रहे हैं, क्या हो रहा है, देर किस बात की है, जाने का समय तो हो गया है। फिर बाबा से बात करते हैं क्या किया जाए, अभी सब लोग रेडी हो गए हैं। तो बाबा बोलते जाके कान में बोल दे कि आज तुझे बड़ी बाई का जिम्मेदारी देने वाले हैं। मैया आती है बोलती है कन्हैया आज तुमको बड़े बाई का जिम्मेदारी देने वाले हैं, झट से उठ के खड़े हो जाते हैं, हरी बोल हरी बोल हरी बोल, और फटाफट तैयार हो जाते हैं। हाँ, स्नान वान करके श्रृंगार करके मुरली लेकर निकलते हैं बाहर। तो बाहर सब दिखते तो क्या 900,000 गाय लाइन में खड़ी है, इतना बढ़िया दृश्य है। कन्हैया बड़े खुश, हमने क्यों इतना देर लगाया उठने के लिए, हाँ कब के उठ जाते तो कब से आधे जंगल पहुंच जाते अभी। तो बीच में फिर मैया आती है, बाबा आते हैं, देखो आज से हमने तुमको इस बड़ी गाय का घर सौंप दिया है, तो कुछ नियम भी होते हैं इसके, हाँ संभाल के जाना, जंगल में दूर दूर तक कांटे होते हैं, कंकड़ होते हैं, पत्थर होते हैं। सभी गोपियों का दिल टूट रहा है कि जिनके चरण कमल बालक के मक्खन से भी मुलायम है और गुलाबी रंग के, मतलब ऐसा खून दिखता है घूमते हुए अंदर से, इतना नाजुक और इतने मुलायम पैर है उनके, अभी दूर जाएंगे तो कंकड़ लगेंगे कांटे लगेंगे, तो दिल में विचार करके भी दुख हो रहा है। तो मैया कहती है देखो दूर जाना है पत्थर लगेंगे, तो आप दोनों के लिए भैया के लिए 2 जोड़ी जूता लाए हैं, और दूर जाएंगे धूप लगेगी धूप में, तो छाता भी लाया है 2, तो ये छाता लो ये जूता पहनो और जाओ। तो कन्हैया कहता है कि मैं तभी जूता पहनूंगा जब आप मेरी सारी गायों को जूता पहनाएंगे। मैं कितनी गाय बताया मैंने आपको, याद है? यस, कितनी गाय बताया मैंने आपको? 900 9 लाख। एक गाय के कितने पैर होते हैं? आपको कितनी जोड़ी की जरूरत होती है? आपकी जोड़ी कितनी दूर कितनी जूता की होती है? 2। अगर गाय को अगर पहनाना है तो एक जोड़ी कितने की हो गई? 4 की हो गई ना, तो जूता कितना हो गए? हाँ बोलो ना जोर से, क्या बात है? 36 लाख जूता लाना पड़ेगा ना उनके लिए, और 9 लाख गाय है। एक छतरी दिया है कन्हैया को, एक दिया बलराम जी को, तो वो बोल रहा है अगर छतरी देना है तो सभी गायों को छतरी दो, जो उनके पास है वो मेरे पास होना चाहिए, इक्वल इक्वल होना चाहिए। तो मैया बोलती है मेरे पास 36 लाख जूता और 9 लाख छतरी नहीं है, जो है वो इतना ही है, पहनना है तो पहनो तो मत पहनो। तो कन्हैया जी निर्णय लेते हैं कि हम नहीं पहनेंगे। आप सोच सकते हैं इतना प्रेम करते गाय पर वो, कि अगर वो नंगे पैर चलेंगी तो हम भी नंगे पैर चलेंगे, अगर वो धूप में चलेंगी तो हम भी धूप में चलेंगे। ये गाय का प्रेम है उनका। ये कौन है मालूम है? कोई सड़क का बच्चा नहीं है झुपड़ी में रहने वाला, ये भगवान है। भगवान है, नंद बाबा के घर में जन्म लेकर वो बालक बनकर डोल रहे हैं, लेकिन है तो भगवान। सभी देवताओं के मालिक, सब ब्रह्मांडों के मालिक, सभी जितने भी विष्णु है सबके निर्माता है ये। और क्या कर रहे हैं? नंगे पैर घूमने जा रहे हैं राजा होने पर भी, चलते हैं सब लोग। लेकिन चलने के पहले सब गाय सुन रही है, क्या सुन रही है? अरे हमारा खाना जो है हमारे लिए नंगे पैर जाएगा, ये कैसे हो सकता है? अरे पैर में काटे लगेंगे, लेकिन जूता तो वो पहनेगा नहीं, क्योंकि मैया तो हमारे जूता बनाएगी नहीं, मैया ने तो ना बोल दिया है, साइन नहीं किया उसके ऊपर एप्लीकेशन के ऊपर, हाँ क्या बोलते, सैंक्शन नहीं किया, सैंक्शन तो जूता नहीं आएगा, तो हम भी नंगे पैर चलेंगे, हमको नंगा पैर देख के वो भी नंगा पैर चलेंगे, तो क्या करेंगे? अभी चलो हम लोग चारों दिशा में जाएंगे और चारों दिशा में जितने भी कांटे जितने पत्थर जितने भी होंगे ना, हमारे पैर से कूट कूट कर उसका पाउडर बना देंगे। ऐसा करेंगे कि आज उनका मन किसी भी दिशा में जाने का होगा ना तो उधर पाउडर ही होना चाहिए। इसलिए ये जब डिस्कशन हो रहा है और पता चलता है कि जूते नहीं मिलने वाले हैं हम सब के लिए, उतने में सभी गाय भागती हैं और दूर दूर तक जाके कूट कूट कर सभी जमीन को पाउडर बना देती और दोबारा आकर खड़े हो जाते। मतलब क्या? जितना उनका गाय पर प्रेम उतना गाय का उन पर प्रेम। वो सोच रहे हमारे लिए, हमारे पैर तो पत्थर जैसे हैं, है ना, कैसे होते हैं खून उनके इतने बड़े, लग गए किसी मिस्टेक से तो क्या होता है, खून बहता है, तकलीफ होती है बहुत। तो जानते हैं हमारे पैर तो पत्थर जैसे, हम तो कूट कूट सकते हैं, इनके पैर तो मक्खन जैसे मुलायम हैं, कटेंगे तो कितना दर्द होगा। वो सोचकर गोपियां घर में रोया करती थी, अरे कहाँ जा रहा है अभी, पता नहीं पत्थर में पांव रखा होगा, अरे दर्द हो गया होगा और लाल हो गया होगा। इतना प्रेम करते गाय उन पर, स्वयं गाय भी जितना प्रेम भगवान उनको दे रहे हैं उतना प्रेम उनको दिखा रहे हैं सब जगह। आज भी ब्रज रज का इतना महिमा है, वो ब्रज रज जो है ना, मतलब ब्रज की मट्टी, ब्रज की धूल, वो इतनी महान क्यों है? क्योंकि सब जगह गायों ने कूट कूट कर हर चीज को मक्खन जैसा मुलायम बना के रखा है, जैसे टालकम पाउडर जॉनसन का। आप चलोगे ना अभी गांव में, आपको लगेगा नहीं कि आप जमीन पे चल रहे हैं, आपको लगेगा फूलों पे चल रहे हैं आप, इतना मुलायम। और कभी कभी दाऊ गिरता है सुबह का ठंड का, तो लगता है कि मक्खन पे, ठंडे मक्खन पे आप चल रहे हो, ऐसा अनुभव आता है। तो गाय ने जब अपना काम कर दिया, और ऐसे कहते थे ब्रज की ऐसी महिमा है, ब्रज की ऐसी महिमा है कि ब्रज के अंदर गायों के आंखों में हमेशा पानी भरा रहता था, अश्रु, दुख के अश्रु नहीं, प्रेम के अश्रु, कि आज हम कन्हैया के संग घूमने जाएंगे, इनके बड़े बड़े थन जमीन को टच कर रहे हैं। और जैसे माता को अपने बालक की याद आती है, जो गर्भवती माता है, बच्चा हुआ है उसको, और कभी कभी वो काम पे आना पड़ता है उसको, बालक घर में है और मैया काम पे आ रही है ऑफिस में, और गिरीश बांधकर अभी खड़े हो जाएंगे यहाँ पर 2 मिनट के बाद में, तो मैया को, जो आप जैसी मैया है, बालक घर पे है नया नया, तो बालक की याद आते ही स्तन से दूध निकलता है, तो प्रेम है ना, प्रेम का याद करते ही प्रेम से उनका ऊपर का वस्त्र जो है भीग जाता है। वैसे ही गाय जो है ब्रज की, कृष्ण की याद करते करते कृष्ण के स्मरण में और प्रेम में उनके थन से दूध टपकते रहता है हमेशा। और गर्ता गिरता कहाँ है, जमीन पर। मट्टी कैसी है, एकदम पाउडर जैसी, उस पर दूध गिरता है प्रेम का, और वो ठंडा सब जगह पर ऐसा भूमि पैदा होती है, कहीं पाव रखो उसका निशान आएगा उसके ऊपर, है ना। समझ में आया ना आपको, मट्टी मुलायम जैसी है, पानी छिड़क गया मतलब दूध अगर छिड़क गया उसके ऊपर तो ठंडा हो गया प्रभु, और मुलायम भी हो गया मक्खन जैसा, आप चलो आराम से मजा आएगा आपको। तो ये जब ऐसा करके आ गए वापस, क्योंकि जब कूट रहे हैं मट्टी मट्टी कूट रहे ना, तो थन से दूध भी बह रहा है, क्योंकि इतना प्रेम से किसके लिए कर रहे हैं, कन्हैया के लिए कर रहे हैं, तो उस याद से थन से दूध भी बह रहा है। जब लौट के आए तो पूरा गीला जमीन मक्खन की तरह, उधर ही गायों ने मीटिंग किया ग्वाल बाल के साथ, डिस्कशन किया और क्या तय किया, अभी इस मुलायम गीली गीली जमीन पर जब चलेंगे ना तो दोनों भैया के चरणों के चिन्ह वहां पर आएंगे, है ना। और चिन्ह कैसे है चरणों के, किसी के चरणों में गदा है, चक्र है, अंकुश है, वेदी है, पुष्प है, स्थान है, मत्स्य है, चक्र है, ऐसे ही अलग अलग चिन्ह है दोनों के पैरों पर, और दोनों चलने वाले हैं, दोनों के सुंदर चरण चिन्ह जो है सब जगह उठने वाले हैं। तो हम लोग का वादा रहा कि हम लोग में से कोई उन चरण चिन्हों पर पाँव नहीं रखेगा, हम उनको बनाए रखेंगे, ऐसे ही ऐसा रखेंगे, ये उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया। इसलिए उनके कॉन्ट्रैक्ट की वजह से सब ब्रज के अंदर जो है भूमि में कृष्ण के चरण चिन्ह उठने लगे और वैसे ही बने रहने लगे। लोग उसको देख देख कर याद क्या करते, यहाँ से कृष्ण गए हैं, और जब कृष्ण छोड़ के गए मथुरा को तो उन चिन्हों को देखकर याद करते थे कि यहाँ पर गाय चराते थे। आज भी भगवान की दया से बहुत सारे चिन्ह लुप्त तो हो गए, लेकिन कई सारे चिन्ह अभी भी हैं, और गर्ग संहिता में वर्णन दिया है जो भगवान के चरणों के चिन्हों का दर्शन करता है वो दोबारा इस दुनिया में जन्म नहीं लेता है। हाथों के हो या पैरों के हो या भगवान के शरीर के किसी भी हिस्से का चिन्ह अगर पैदा हुआ, दर्शन करते हैं अपने आंखों से, तो दोबारा इस पृथ्वी पर वो जन्म नहीं लेगा, ऐसा वरदान स्वयं नारद मुनि ने दिया है बहुलाश को कथा बताते समय। तो फिर निकले लोग, दूर दूर तक गए, सबको खाने का पैकेट बांध के दिया गया था, क्योंकि जब बालक थे तो पास में हुआ करते थे ना वो गाय चराते चराते, तो रोज दोपहर को घर से भोजन जाया करता था, और जहाँ पर जिस जंगल में दिखाई पड़ रहे हैं वहीं जाकर भोजन देके सब ग्वाल बाल खाया करते थे। लेकिन आज तो दूर जाने वाले हैं, इस सबको पैकेट बांध के दिया है, सब लोग दूर जाते हैं, जमुना किनारे बैठकर भोजन करते हैं, आनंद लेते हैं, और जब लौटने को आते हैं उस दिन फर्स्ट डे है ना गोपाष्टमी का, एक दिन का पहले दिन का काम है ये, तो हमारे कान्हा जी थक जाते हैं, क्योंकि इतनी दूर तो पहले कभी गए नहीं थे, आज इतनी दूर चलाया सब ग्वाल बालों ने, आनंद लिया, लौटते वक्त थक गए, तो ग्वाल बाल देखते अरे आज तो इतना आनंद आया, कन्हैया को लेके दूर चले गए, लेकिन अगर मैया देखेगी कि ये थक गया है तो कल उसको बोलेगी आज सीएल ले ले तू, जाना मत आज, क्योंकि बहुत थक गया है तो आराम कर लो परसों जाओ, तो फिर कैसा होगा। इसलिए सब ग्वाल बाल विनोद करने लगते हैं, चोक बोलने लगते हैं, गाने गाने लगते हैं, ताकि हंसता रहे, ताकि जब पहुंचेंगे घर पे तो हंसता हुआ चेहरा मैया को दिखाई पड़े, ताकि ये दोबारा कैंसिल ना हो जाए प्लान, कल भी आने का प्लान होता रहे। इसलिए उस दिन की लीला ये है, पूरे वापसी के रास्ते पर कृष्ण भगवान जो है उसको सब लोग हंसाते हैं, रिझाते हैं, नाच करके दिखाते हैं, नकल करके दिखाते हैं, बंदर बन के दिखाते हैं, ताकि एंड में हंसता रहे। बहुत हंसते हंसते सब लोग आते हैं, नंदगांव लौटते हैं, और नंदगांव लौटते देखते क्या है, सभी गायें जो है कुछ इधर गई है, कुछ उधर गई है, यहाँ चल रही है, वहाँ चल रही है, तो करना है क्या करते हैं, एक कदम के पेड़ पे चढ़ते हैं। नंदगांव में आने के बाद की बात है, अभी घर जाने का समय है, अभी आ गया है, तो सभी गायों को बुलाने के लिए एक बड़े कदम के पेड़ पे चढ़ते हैं, एकदम ऊपर ऊंची डाल पे आते हैं, बहुत ऊंची डाल पर, और वहाँ पर बैठ कर बांसुरी बजाते हैं। तो बांसुरी बजा, आपने सुना ना बांसुरी कैसे बजती है, सबको बांसुरी सुनाई पड़ती है, लेकिन वो ने जब बांसुरी बजाई तो बांसुरी का आवाज सुनाई नहीं आया किसी को, हर एक गाय को अपना नाम सुनाई पड़ा। जैसे मैंने एक बांसुरी बजाई और इनको सुनाई पड़ा संदीप, इनको सुनाई पड़ा हरीश, हाँ जयेश, इनको सुनाई पड़ा गिरीश, इनको सुनाई पड़ा हाँ गोपाल, और आपको सुनाई पड़ा क्या चंपा, आपको सुनाया पड़ा क्या? हाँ किशोरी, मतलब क्या हुआ, हर एक गाय को केवल अपना नाम सुनाई पड़ा, उसके अंदर बजा रहे एक धुन, लेकिन सबको लग रहा है कि मुझे बुला रहे हैं, मेरे नाम से पुकार रहे हैं। 9 लाख गाय को अपना अपना आवाज सुनाई पड़ रहा है। और ये बात भूलना मत कि केवल कृष्ण की गाय नहीं थी उसमें, सभी ग्वाल बाल अपनी भी गाय लेके आते थे, तो 9 लाख खाली कृष्ण की गाय थे, बाकी सब तो और लोगों की गाय है ना, अपने अपने गाय को भी लेके आते ना वो, तो सभी गायों को जितने नाम दिए गए थे सबको अपना अपना नाम सुनाई पड़ रहा है उसके अंदर। तो जैसे ही अपना नाम सुनते हैं सब लोग, कान ऊपर करके पूंछ को ऊपर उठाकर भाग के आते हैं पेड़ के नीचे, और गर्दन को ऊपर उठाकर सुन रहे हैं कहां से मुरली बज रही है, मतलब आंखें ऐसे बंद ही नहीं हो रही है, आंखों से आंसू बह रहे हैं, मुंह में जो घास है वो चबाना छोड़ दिया है और आ करके ही उसको देख रहे हैं कहां से मुरली बज रही है, इतनी मधुर मुरली बज रही है। और कुछ गाय ऐसी है कि इतनी सारी मुरली में अपनी आवाज सुनने के बाद भी जानबूझकर वो दुर्लक्ष करती है, क्योंकि वो चाहती है कि काना नीचे उतरे और हमें हाथ से हाथ लगाकर लेके आए, खुद केवल आवाज से नहीं, पुकार के नहीं आएंगे। तो कन्हैया जी उनकी इच्छा पूरी करने के लिए झाड़ से उतरते हैं और वहां उनके पास जाते हैं और पीठ पे थपथपाकर उनको अपने हाथ से उठाकर लेके आते हैं, और सब लोग मिलकर वो पेड़ के नीचे जमा होते हैं और वहां से फिर गीत शुरू होता है, और वहां से गीत शुरू होकर चलते चलते सब नंद भवन पहुंच जाते हैं। और ग्वाल बाल ये बात देखते हैं कि हमारे कन्हैया हंस रहे हैं, थके हुए या परेशान नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, दे मेक श्योर दैट ही स्माइलिंग। सब लोग नीचे आते हैं, मैया को उस दिन ये क्या कहते हैं उसको तसल्ली नहीं उतनी कि वो पहाड़ पे चढ़ के आएगा तब तक मैं इंतजार करूंगी, वो देखते हैं दूर से आ रहे आ रहे आ रहे, वहां से मुरली बज रही है, अभी आने वाला है, गाय लग गाय सब लोग आ रहे आ रहे आ रहे। आपको पता है क्या गोधूली मूर्ति कहां से पैदा हुआ, किसी को मालूम है? आमचा ये थे स्वी कृपे करून आमची कन्या अमुक तमुक आमसा अमुक तमुक यांच्याशी विवाह करणे योजले आहे गोधूली मुहूर्तावर, ऐसा लिखते ना पत्रिका में, गोरज मुहूर्तावर स्टैटा स्टैटा म्हणजे काय स्टैंडर्ड टाइम स्टैटा 5:30 स्त्री कृपेने करण्याचे योजले आहे, तरी तुम्ही सर्वांनी अगत्याने उपस्थित राहून कृपा करण्याची विनंती करावी, नाही काय विनंती करून काय ते करावं, ठीक आहे हरी बोल। तो ये गोधूली और गोरज मुहूर्त कहां से पैदा हुआ था, कुछ तो सोचो, खाली पत्रिका पढ़ते बोलते हाँ जाना है। जिस समय गाय लौट के आती है और रज जो है गाय के पैर के आकाश में उड़ती है उसको कहते हैं गोरज मुहूर्त। वो समय इतना पवित्र होता है कि कोई और मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं होती, इसलिए गोरज मुहूर्त पर आप कभी भी शादी कर सकते हो, कभी भी कोई पवित्र काम कर सकते हो, क्योंकि गोरज जो है उसका भगवान स्वयं तिलक लगाते हैं। आज भी आप जाएंगे ना ब्रज में, ऐसा रिवाज है जब गायें चर के आती ना तो ब्रजवासी जो है जो वहाँ रहते हैं लोग जाकर गाय के पास बैठते हैं, गाय भी बैठी हुई है वो भी बैठते हैं, गाय का पैर लेते हैं और खुर के बीच में जो मट्टी अटकी हुई है उसको निकालते हैं और उसको अपने सर पे लगाते हैं और वो मट्टी इकट्ठा करके रखते हैं, और जब भी कोई इंटरव्यू है एक परीक्षा है कोई बड़ा कुछ काम करना है तो वो तिलक लगा के जाते हैं गोरज का। मेरे पास भी घर पे रखा हुआ है, कुछ ब्रजवासियों ने मुझे लाके दिया है कि आप इसको रखो, जब भी कोई महान कार्य करना हो तभी इसको लगा के जाना, कितनी श्रद्धा है गाय के ऊपर। तो गाय धन हुआ करता था और गाय को ही पूज्य मानते थे, इसलिए उनके चरणों की रज जो है वो सर पे लगाते थे। तो इस तरह से उनको ऊपर से पता चला है कि आ रही है धूल उड़ रही है धूल उड़ रही है, तो भाग के नीचे आ गए सब लोग, उनको धैर्य नहीं है जब तक ऊपर आएगा तो बहुत देर हो जाएगी, हमको उसको पहले उसको देखना है, चलो सखियों चलो चलो आरती का सामान ले लो, दीपक ले लो, अगरबत्ती ले लो, फूल ले लो, मिठाई ले लो, छाछ ले लो, माखन ले लो, चलो भागो नीचे, अभी ऊपर रहने का कुछ काम नहीं है, सब नीचे नीचे चले जाओ। तो ये नंद बाबा और यशोदा माई पहाड़ उतर के नीचे आते हैं और वहां पर एक जगह है उसका नाम है नंद बैठक, वहीं खड़े हो जाते हैं, मतलब सबसे पहले आएगा तो पहले दर्शन करेंगे। जैसे आते हैं कृष्ण बलराम एकदम भाग के बाबा के गोद में कूदते हैं, दोनों बालकों को उठा के लेते हैं, एक जगह बैठ जाते हैं, उसका नाम है नंद बैठक, वहां पर एक जगह है नंद बैठक, वो यशोदा कुंड के किनारे में है, आप लोगों को कैंपिंग लेके गए थे, वहां पर बैठते हैं एक गोद में कन्हैया एक गोद में बलराम, और इसका एक पैर इसके एक पैर में ऐसा मिला हुआ है क्रॉस में, और बैठ के बाबा को बता रहे हैं कहाँ कहाँ गए, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे कूदे, किधर किधर भोजन किया, कैसे कैसे मेंढक का नकल किया, बंदर का नकल किया, कितना आनंद आया, क्या क्या हुआ बेटा, क्या क्या हुआ, हमने ऐसा किया वैसा किया। जैसे आपका बच्चा स्कूल से आता है ना, बेटा क्या हुआ स्कूल में आज, हमने आज गेम खेला, हमने टीचर ने ऐसा बताया, फिर हमने ऐसा किया, वो गाना गाया, ऐसा किया, पूरी स्टोरी सुनाते हैं तो वहाँ से हिलते नहीं हैं। तो बाबा बैठ कर पूरी कहानी सुनते हैं, फिर मैया कहते हैं अभी चलो, अभी स्नान करने का समय हो गया है। तो सब ग्वाल बाल बाय बाय करते हैं, कल फिर मिलेंगे, अपनी अपनी गाय को लेके अपने घर चले जाते हैं। कृष्ण बाबा, कृष्ण और बलराम जी की गाय जो है अपने अपने कोठे में चले जाती है। तो ये गोपाष्टमी की कहानी है। इतनी सुंदर उत्सव है ये गोपाष्टमी के दिन, सभी ब्रजवासी लोग अपने अपनी गायों को अच्छी अच्छी कंबल डालकर, अच्छा अच्छा ना वो डिज़ाइन का एम्ब्रॉयडरी का शाल डालकर, पैरों में घुंघरू बांधते हैं, गले में घंटा बांधते हैं और सबके घर में छोड़ देते हैं। और जहाँ जहाँ गाय जाती है सब घर में से लोग बाहर आकर आकर गाय को खाना खिलाते हैं। उस दिन पूरे ब्रज में गोपाष्टमी के दिन गाय के नाम से भोजन बनता है। मैं आपके घर में कोई जमाई आने वाला है, कोई फ्रेंड आने वाला है, कोई बड़ा आदमी आने वाला है, दीपावली में गेस्ट को बुलाया है तो गेस्ट के लिए खाना बनता है ना उस दिन, के भाई मेहमान आने वाले हैं। गोपाष्टमी के दिन पूरे ब्रज के अंदर गाय के लिए खाना बनता है और सब लोग वेट करते हैं कि मेरी गाय हो किसी की गाय हो, आंगन में आएगी तो खिलाना है उसको। सब लोग बाहर खाना लेके आते हैं और वेट करते हैं गाय आएंगी, और झुंड के झुंड जो है गाय के सब गाँव में घूमते हुए नजर आएंगे आपको। अपना अपना गोटा छोड़कर, गौशाला छोड़कर सबके घरों में जाकर पूरा गली गली में घूम रहे हैं और सब जगह उनको तिलक लगा रहे हैं, कोई चंदन लगा रहे हैं, कोई डिजाइन बना रहे हैं, कोई पैर में घुंघरू बांध रहे हैं, कोई खाना खिला रहे हैं, गीत गा रहे हैं, उनके लिए आरती उतार रहे हैं। ऐसा दृश्य आपको देखने को मिलेगा और हमने कई बार देखा है। कितने झुंड जो है, हजारों गाय जो है रास्ते में डोलती रहती है उस दिन पूरे ब्रज के अंदर। कहीं भी जाओ, हाईवे में जाओ, गली में जाओ, गाँव में जाओ या किधर भी जाओ, इतना सुंदर उत्सव है। और अलग अलग गीत गाते हैं, सुबह के समय गीत क्या गाते हैं कि अभी कान्हा निकल रहे हैं उसके गीत गाते हैं। दोपहर में गाना के गाय चराते समय क्या भोजन कर रहे हैं जमुना किनारे के, उसके गीत गाते हैं। पूरा दिन भर गीत गाते रहते हैं कि आज के दिन में भगवान ने क्या क्या किया। फिर खास गीत उनके जो है वो लौट के आने वाले गीत हैं। कौन से? मजाक मजाक में कृष्ण को कैसे हंसाया उन्होंने, वो सारे गीत गाते हैं। ऐसा खजाना है गीतों का, एक दिन का सोचो आप। फिर आकर गीत गाते, लास्ट में गीत गाते कहां पर? टेढ़ गंधर्व के स्थान पर। वहां सब ग्वाल बाल इकट्ठा होते हैं और वहाँ कौन सा गीत गाते हैं कि अभी कन्हैया यहाँ बैठकर बांसुरी बजा रहा है। सब गाय भाग भाग के आ रही है, सब गाय गर्दन उठाकर बड़ी बड़ी आंखें करके, कान खड़े होकर, पैर को ऊपर करके, पूंछ को ऊपर करके देख रहे हैं कन्हैया के मुंह से मुरली बज रही है। कारी कामर धोरी धूमर अलग अलग गाय का वर्णन करके सभी गाय कैसे मुंह उठाकर, पूंछ उठाकर, कान उठाकर सुन रहे हैं कान्हा का मुरली का म्यूजिक, उसके गीत गाते हैं। तो उसके बाद में क्या गीत गाते हैं, कान्हा उतर रहे हैं और कुछ गायों को हाथ से पकड़ के प्रेम से लेके आ रहे हैं। वे सभी लोग गीत गाते हुए अपने घर की ओर जा रहे हैं और मैया भाग भाग के नीचे आ रही है। उसको धैर्य नहीं है कि ऊपर आएगा तो बहुत देर हो जाएगी, तो नीचे खुद को उतर के आ रही है। फिर वहाँ नंद बैठे में क्या लीला हो रही है उसका वर्णन करते हैं। और फिर अभी कान्हा को वापस आने के बाद में अभी लोरी सुनाकर सुलाया जा रहा है। ऐसे पूरा दिन का जो है सब कविता गाते रहते हैं। मेरे घर पे गोपाष्टमी के दिन नंदगांव के गोस्वामी लोग आए थे इलाज करने के लिए। नंदगांव के लोग गोपाष्टमी का उत्सव कभी भी छोड़ते नहीं है। किधर भी काम करते हैं, लखनऊ में काम करेंगे या तो मथुरा में काम करेंगे, लेकिन नंदगांव में उस दिन छुट्टी लेकर लौट के आएंगे। उनके लिए गोपाष्टमी का उत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है। और सभी ग्वाल वाल बच्चे भी हैं, बड़े बुजुर्ग भी हैं, सब लोग चलते हैं लीला गाने के लिए। तो वो इलाज करने के लिए आए तो यहीं रुकना पड़ा उनको। इतने तड़प रहे थे वो घर पे, 50 फोन किए मेरे घर से नंद बाबा के गांव में, अभी कहाँ पर है गाय, अभी यहाँ तक आ गई है, अभी कौन सा पद गा रहे हैं जरा हमको सुनाओ। तो मोबाइल पे वहाँ पर चल रहा है, वो यहाँ पर मोबाइल पे सुन रहे थे, अभी ये पद हो रहा है, अभी ये पद हो रहा है, अरे अभी कहाँ पर आ गए। फुल डे फोन करते रहे मेरे घर से, इतने व्याकुल थे वो। गोपाष्टमी का उत्सव हो रहा है और हम लोग बम्बई में क्या कर रहे हैं, वहाँ पर होना चाहते हैं। अनेक बार फोन करके उन्होंने घर में बैठकर सारे गीत सुने, जो वहाँ के लोग बड़े बूढ़े लोग गाय के साथ चलते चलते गीत गाते हुए उत्सव मना रहे थे। तो ये ऐसा ब्रज है, सुंदर ब्रज। आपको पता है ब्रज की व्याख्या क्या है, किसी को पता है ब्रज किस देश को कहते हैं? एनी आइडिया? ब्रज उस देश को कहते हैं जहां सब गाय निर्भय होकर विहार करती है, जहां गाय को कटने का या कोई आतंक का या कोई भय नहीं है किस बात का। मुंबई में ऐसा है क्या?
गाय भयभीत रहती है, या तो कोई कसाई आके उठा के ले जाएगा, काटा जाएगा कत्तल खाने में। हाँ, ऐसे क्रूर लोग हो गए आज के। गाय सबकी माँ है, वो न केवल अपने बालक को दूध पिलाती है लेकिन सभी लोगों को दूध पिलाती है। इतना दूध देती है कि दुनिया भी पीती है। कि दुनिया कैसी है, उसी गाय का दूध पीती है, उसी गाय को मारकर उसका मांस भी खाती है, माता की हत्या करती है। तो गाय कैसे निर्भय हो सकती है ना। दूध तो दे रही है बेचारी, वो कोई मशीन से खींच कर निकाला जा रहा है। उसमें बछड़े को एक मिनट मुंह लगा के बछड़े को खींच कर बाजू में करते हैं, फिर सब दूध निकाल लेते हैं। सब राक्षसी स्वार्थी लोग हैं। तो यहाँ पर तो गाय निर्भय होकर व्यवहार नहीं कर सकती। तो जिस देश में गाय के जीवन को सुरक्षा है, गाय प्रसन्न है, उस देश को ब्रज कहते हैं। और वो ब्रज पहले भारतवर्ष पूरा ब्रज था। आज मथुरा भी ब्रज नहीं है, क्योंकि मथुरा में भी कत्तल खाने लगाए गए हैं। वहाँ पर भी यवन लोग गाय को उठाकर लेके जाते हैं काटने के लिए। रात के रात गौशाला में घुसते हैं और गन वन दिखाकर गाय को उठाकर ले जाते हैं और रात को काटते हैं उसको। तो हमारा धन जो है गाय का धन था पहले। जितना गोधन ज्यादा उतना अमीर आदमी हुआ करता था, क्योंकि गाय के दूध पर, दही पर, मक्खन पर और घी पर पूरा इकोनॉमिक्स चलता था उनका। खाने पीने की चीजें गाय पर आती थी। बैल खेत में जोतते थे और गाय को चराकर दूध निकालते थे उसका। इतना दूध और दही था कि खेल खेल में और मस्ती मस्ती में मक्खन को दूसरे को फेंकते थे प्रेम से। जैसे फूल फेंकते ना, वैसे मक्खन और दही और हल्दी फेंकते थे सबके ऊपर। इतना दूध हुआ करता था, इतना मक्खन हुआ करता था। अरे यशोदा माई के पहाड़ के ऊपर यशोदा माई जब मंथन करती थी दही का, तो कुछ कुछ दही से छाछ बनती थी ना और मक्खन निकलता था। तो कुछ कुछ छाछ जो है ना उड़ते उड़ते बाहर निकल जाती है ऐसे। अरे ऐसी जो छाछ बाहर निकलती थी, वो छाछ जो बहते बहते नीचे आती थी, उसका एक कुंड बना था, कुंड, उसका नाम था छाछ कुंड। इतना छाछ हुआ करता था कि बचा हुआ गिरा हुआ छाछ इकट्ठा होकर एक कुंड बना था, कुंड। आज कहाँ छाछ कुंड है? छाछ कुंड नहीं है, अलुप्त हो गया आज। और लोग छाछ बेचते हैं। ब्रज में ऐसा रिवाज है कि कोई छाछ नहीं बेचता, क्योंकि वो दरिद्र होने का लक्षण है। जो इतना कंगाल हो गया है कि छाछ भी बेचना पड़ रहा है, ये दरिद्र माना गया है। इसलिए गरीब से गरीब आदमी भी छाछ को बेचता नहीं कभी, छाछ को फ्री में बेचता है, फ्री में देता है लोगों को। दूध दही और घी बेचेगा वो, लेकिन छाछ जो है वो जितना मेहमान आएगा सबको फ्री में दे देगा। हम लोगों ने अनुभव किया है। हमारी 2000 लोगों की यात्रा उधर गई थी सूर्यकुंड पे। 2000 लोगों को एक घंटे में सब लोगों ने अपने घर से मटके ला लाकर छाछ पिलाया। जितना चाहिए उतना पियो, ऐसा नहीं एक के लिए एक गिलास, ऐसा नहीं। घर घर से मटका लेके बाहर आ गया, हमारे पास आओ, हमारे पास आओ। और सब 2000 यात्रियों को पेट भर के छाछ पिलाया, वो भी जीरे का तड़का मारा हुआ। सोचो आप, दिल कितना उदार है लोगों का। ये समृद्धि है, क्योंकि गाय सबका बड़ा धन है। गाय के ऊपर सब पोषण होता है, सब कल्याणकारी काम होता है, सब मंगलमय वातावरण निर्माण होता है, सब गाय के होने से। सुबह उठेंगे और गाय की आवाज़ सुनेंगे, बोलेंगे आज का दिन धन्य हो जाएगा। गाय के चरणों की रज लगा कर जाएंगे काम पे, तो काम सफल हो जाएगा। ये हमारे भारत की संस्कृति है। इसलिए गोपाष्टमी का उत्सव बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें गाय की पूजा करते हैं। बोलो गौ माता की, ब्रजभूमि की, हिताई गौर प्रेमानंदे, हरे हरि बोल, जय श्री राधे श्याम। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।